ओम शांति। आप सभी भी प्यार से बोले ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सर्वप्रथम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन की सोशल सर्विस विंग की तरफ से आप सभी अतिथियों का ज्ञान सरोवर परिसर में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, अभिवादन है, स्वागत है। अभी मैं अनुरोध कर रही हूँ, हमारे आज के प्रथम व्याख्यान सत्र में पधारी हुई विद्वान विभूतियां मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगी। तो मैं दीदियों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आदरणीय पूनम दीदी जी, चंडीगढ़ जोनल कोऑर्डिनेटर सोशल सर्विस विंग चंडीगढ़, आदरणीय सभी करतल ध्वनि से दीदी जी का वेलकम करेंगे, आदरणीय राज योगिनी तारा दीदी जी पनवेल मुंबई, अतिरिक्त जोनल कोऑर्डिनेटर सोशल सर्विस विंग राजस्थान, सभी करतल ध्वनि से आपका वेलकम करेंगे। आदरणीय राज योगिनी मीना बहन जी एरोली मुंबई, मेंबर ऑफ सोशल सर्विस विंग, आपसे भी हम अनुरोध करते हैं कि आप स्थान ग्रहण करें। आदरणीय राज योगिनी प्रीति बहन सिरसा, स्टेट कोऑर्डिनेटर सोशल सर्विस विंग हरियाणा, आपसे भी हम अनुरोध करते हैं कि आप स्थान मंच पर ग्रहण करें। और आज के पहला प्रथम व्याख्यान सत्र के सम्माननीय अतिथि श्री डॉक्टर पंडित देवज्योति शर्मा कच्छ, फाउंडर ऑफ लाइफ स्किल्स डायनामिक मेडिटेशन, आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। तो अभी हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एक प्रथा है, जो भी कार्यक्रम हम शुरू करते हैं उसके पहले परम सत्ता जगत नियंता परम पिता परमात्मा शिव बाबा की स्मृति में हम 3 मिनट बहुत साइलेंस में बैठेंगे। जो भी भाई बहन हमारी आवाज को सुन रहे हैं और ज्ञान सरोवर परिसर में यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, सभी भाई बहनों से नम्र निवेदन है कि हमारे कॉन्फ्रेंस का पहला सत्र आरंभ हो चुका है, सभी भाई बहन शीघ्रातिशीघ्र हॉल में आकर अपना स्थान ग्रहण करें। आज बहुत ही सुंदर विषय पर चर्चा और परिचर्चा होगी। तो हम सभी जानते हैं कि आज का पहला व्याख्यान का विषय है अतीत से आजादी, है ना? तो हम सभी जानते हैं कि मानव जीवन में जब हम पास्ट की लाइफ को देखते हैं तो कई बार हमारे मन में एक कुंठा उत्पन्न होती है और पुरानी बीती हुई बातों से मन में एक चिंता उत्पन्न होती है और उन बातों को लेकर हम आज के समय को क्या करते हैं, खराब करते हैं। बीती हुई बातों की चिंता हमें बहुत ज्यादा होती है। जहाँ कहीं भी हम समाज में लोगों के बीच बैठते हैं तो पुरानी बातें अगर कुदेर देता है तो हम उन्हीं पुरानी यादों में और जो पुरानी यादों में जो स्थिति हमारी हुई थी उसी स्थिति में हम वापस चले जाते हैं। इससे हमारे माइंड पर बहुत बुरा असर होता है। इसलिए आज का ये बहुत सुंदर विषय है, बहुत इंटरेस्टेड विषय है, अतीत से आजादी। तो हम सभी बहुत ध्यान से इस सब्जेक्ट को सुनेंगे और अपने जीवन में फॉलो भी करेंगे। हमारे मंचासीन अतिथियों के द्वारा बहुत सुंदर बातें आप सबको सुनने को मिलेगा। तो अभी मैं हमारी बहनों से अनुरोध करती हूँ कि मंच पर आसीन हमारे सभी अतिथियों का पुष्पों से, बैज से अभिवादन करें, स्वागत करें। हमारे बीच हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि श्री पंडित देवज्योति शर्मा जी, आप फाउंडर ऑफ लाइफ स्किल डायनेमिक मेडिटेशन के डायरेक्टर हैं। और हमारे बीच हमारी दादा तारा दीदी जी, जो हमारे मुंबई से पधारी हुई हैं, जोनल कोऑर्डिनेटर हैं। हमारी प्रीति बहन, और अच्छे से हम सभी करताल ध्वनि से स्वागत करेंगे हमारी मीना दीदी जी, जो एरोली से पधारे हैं। और हमारे बीच हमारी पूनम दीदी जी, जो चंडीगढ़ से पधारे हैं, जोनल कोऑर्डिनेटर हैं सोशल सर्विस विंग के। तो हम सभी जानते हैं कि आज के समय में, आज के प्रथम सत्र का विषय अतीत से आजादी, अर्थात अतीत को पीछे छोड़ना या भूलना, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम होता है। अतीत की बातें हमारे मानस पटल पर ऐसा छाया हुआ रहता है कि बार बार वो हमारे लाइफ में दोहराता रहता है। तो अतीत को पीछे छोड़ना या भूलना, भूलने का मतलब ये नहीं है कि हम भूल जाएं, परंतु उसका मतलब है कि बस, भूलने का मतलब है कि बीती बातों को वापस अपने मन बुद्धि पे नहीं लाएंगे। भूलने का मतलब है कि उन बातों को भूलकर बस आगे बढ़ना है। परिवर्तन संसार का नियम है, अतः किसी भी बदलाव से घबराए नहीं, क्योंकि अतीत में हुई कुछ घटनाएं हमें सफलता दिलाएंगे और कुछ घटनाएं सफल होने के गुर सिखाएंगे। अतीत को भूलना आसान नहीं होता है, और तब जब अतीत के कुछ पहलू नकारात्मक हो, लेकिन फिर भी उन पास्ट की गलतियों से सबक या शिक्षा लेकर हम उसे भविष्य की ओर जाने के लिए नए रास्ते बनाने वाले सीढ़ी के रूप में प्रयोग कर सकते हैं और निरंतर आगे बढ़ सकते हैं। अतीत के आधार पर जीना मतलब वर्तमान के प्रति जागरूक होने की संभावना को त्याग देना, जैसे जीवन में नीरस अनुभव करते रहेंगे, है ना। वर्तमान को भी हम अतीत की यादों से, अतीत की बातों से वर्तमान को जीने में खराब करना, या वर्तमान में अपने जीवन में नीरस अनुभव करना। इसलिए कल से सीखो, गया हुआ कल से सीखो और आज के लिए जियो, आने वाले कल के लिए आशा रखो, सदा आशावादी बनो। अतः ध्यान रखें, अफसोस से अतीत नहीं बदलता। कई बार हम लोग अफसोस करते हैं ना कि काश हमने ऐसा नहीं किया होता तो ऐसा नहीं होता, मेरी लाइफ में ये दुख नहीं आता, मेरी लाइफ में ये धोखा नहीं होता, उस व्यक्ति से मैं इतना घनिष्ठता नहीं बनाया होता, है ना। बहुत सारी बातें ऐसे मन बुद्धि में आ जाते हैं जो काश काश हम बोलते रहते हैं बार बार, और हमें अफसोस होता रहता है। अफसोस से अतीत नहीं बदलता और चिंता से भविष्य नहीं बदलता, इसलिए हमेशा प्रसन्न रहे। बीती हुई बातों को भी लेकर हम कुछ पाठ पढ़ें, सीखें और वर्तमान को सदा खुश रखें, प्रसन्न रखें और भविष्य के लिए सदा आशावादी बने। वर्तमान को महत्व देकर चलें। जीवन में इस यात्रा में निरंतर व सकारात्मक रूप से आगे बढ़ते रहें। स्मृति रहे, जिस दिन आप अतीत से आजाद हो जाएंगे उस दिन आप स्वयं ही आगे बढ़ जाएंगे। तो मैं आगे हमारी मीना दीदी जी से, अच्छा पूनम दीदी जी से अनुरोध करेंगे। आज हमारे इस सत्र की मुख्य वक्ता हैं, तो मैं पूनम दीदी जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जरूर अपने मंतव्य से हमारे भाई बहनों को लाभान्वित करेंगे। मैं पूनम दीदी के विषय में कुछ बोलना चाहूंगी। आपने कमर्शियल आर्ट्स में डिग्री प्राप्त की है। आप 1984 में ब्रह्मा कुमारीज के संपर्क में आए। 1997 में आपने शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात आपने अपना जीवन आध्यात्मिकता, आत्म सशक्तिकरण और सकारात्मक जीवन शैली का प्रशिक्षण देकर मानवता की सेवा करने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में को समर्पित कर दिया। वर्तमान समय आप शाखा सेक्टर 46C चंडीगढ़ में राजयोग शिक्षिका हैं। आपने निम्न विषयों पर व्याख्यान देने के लिए माउंट आबू दिल्ली, हैदराबाद, उत्तरांचल, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कोलकाता और आसाम का व्यापक दौरा किया है। विषय आपने दिया पीस एंड हार्मनी, पॉजिटिव लाइफ स्टाइल, स्ट्रेस मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट, रिलेशन मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन स्किल, एक्सीलेंस इन परफॉर्मेंस, हैप्पी फैमिली लाइफ। आप सोशल विंग की एजुकेटिव मेंबर भी हैं। आप राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन की सिक्योरिटी सर्विस विंग की रेगुलर फैकल्टी भी हैं। आपने कई प्रकार के जागरूकता अभियानों का नेतृत्व किया है। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन रैली आपने किया है 1999 में। शिव ज्योतिर्लिंगम यात्रा में आपने, है ना, पार्टिसिपेट किया है सन 2000 में। मूल्यनिष्ठ समाज रैली में आप 2009 में शामिल हुए। आपदा प्रबंधन अभियान 2012 और 2018 में आपने पार्टिसिपेट किया। आपने अभी बिजनेस विंग का कैंपेन पुणे में पूरा किया। आपने बीएसएफ, सीआईएसएफ, एयरफोर्स, एसएसबी, सीआरपीएफ, आर्मी आदि जैसे सेना और अर्धसैनिक बलों में सैकड़ों व्याख्यान दिए हैं। आपने पिछले 12 वर्षों से कोरोना काल तक चंडीगढ़ के मॉडल जेल में रेगुलर क्लासेस भी कराए और उन आध्यात्मिक उपदेशों के माध्यम से हजारों कैदियों ने अपने जीवन को परिवर्तन भी किया है। तो मैं पूनम दीदी के लिए कुछ शब्द बोलना चाहूंगी। ओम शांति के महान अर्थ में सबको टिकना है सिखलाया, शांति धाम है हमारा घर, सदा ही सबको याद दिलाया, घर जाने की प्रबल इच्छा को हम सब के अंदर जगाया। ऐसी महान विभूति आदरणीय पूनम दीदी जी को हम रिक्वेस्ट करेंगे आप सबको बहुत अपने अनुभव युक्त मंतव्य रखें।
ओम शांति, ओम शांति। थोड़ा जो पीछे पीछे भाई बहन है थोड़ा आगे आ जाएं, आपकी गूंज इकट्ठी हो जाएगी। ओम शांति वो महामंत्र है जिसके द्वारा हम स्वयं को आचरण व्यवहार सबको जान पाते हैं, क्योंकि यहाँ प्रथम पाठ ही सीखा और सिखाया जाता है। ओम अर्थात मैं शांति शांत स्वरूप हूँ। तो मैं कौन हूँ? आज का प्रथम सत्र सुबह सुबह किसने किया था? बिल्कुल टाइमली आए थे जो सभी सभी पहुंचे थे, हाथ खड़ा करेंगे जो सुबह 6:30 बजे इस हॉल में थे। तो उसमें क्या समझा था? हम कहते हैं माइक मेरा है, तो मैं कौन हूँ? वक्ता हूँ, मैं बोल रही हूँ, परंतु मैं माइक नहीं हूँ। माइक वो माध्यम है जिसके द्वारा मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। तो इस प्रकार से यहाँ दो बातों को बहुत भिन्नता से समझाया जाता है और बहुत एक विशेष तरीके से समझा कि जैसे दीपक और ज्योत, जैसे गाड़ी और ड्राइवर अलग अलग हैं, परंतु एक साथ मिलकर ही कार्य चलता है। जब तक ड्राइवर नहीं है गाड़ी नहीं चलेगी, ज्योत के बिना उस दिए की वैल्यू नहीं है। तो इस प्रकार से जब हम देखते हैं अंदर की चीज की वैल्यू है, सीप में मोती का महत्व है, मोबाइल में सिम का महत्व है। अर्थात है तो छोटी सी चीज, चाहे 50,000 का मोबाइल ले लो, परंतु वो 50 रुपए का सिम जरूरी है। तो यहां सबसे प्रथम बात ये समझ में आई कि कितना भी बड़ा शरीर हो, कोई भी ब्यूटी क्वीन हो, बड़े से बड़ा पहलवान हो, परंतु जिस दिन छोटी सी आत्मा निकल गई, इतनी छोटी इतनी सूक्ष्म कि ना वो आती हुई दिखाई दी थी गर्भ में प्रवेश होती हुई, ना वो निकलती हुई दिखाई देती है, उस छोटी सी आत्मा के प्रभाव से ही इतना बड़ा शरीर चल रहा है, घूम रहा है, नाच रहा है, सब कुछ हो रहा है। परंतु व्यक्ति का सारा फोकस जो दिखाई दे रहा है उस पर हो चुका, व्यक्ति का फोकस उस शरीर पर सारी उम्र लगा रहता है। व्यक्ति जिम ज्वाइन करते हैं कि हम स्वस्थ रहें, परंतु तन से पहले क्या स्वस्थ होना चाहिए था? मन। मन ठीक नहीं है सुबह उठने को दिल करेगा? मन ठीक नहीं है जिम जाने को दिल करेगा? तो प्रैक्टिकल सी बात है, सबसे पहले जो अंदर जो ड्राइवर है स्वस्थ वो होना चाहिए। ड्राइवर अच्छा है वो गाड़ी ठीक रख लेगा, और जिस बढ़िया से बढ़िया गाड़ी का ड्राइवर बीमार है वो अपनी गाड़ी भी बेकार कर देता है, जो कई दिन से पहुंची नहीं, कई दिनों से चलाई नहीं, है ना, वो कैसी हो जाएगी गाड़ी। तो जब हमें ये बात समझ में आई तो इस ओम शांति का मंत्र समझ आया कि मैं मीन्स आई एम ए सोल एंड आई एम पीसफुल सोल। मैं आत्मा हूं और शांत शुद्ध शक्तिशाली पवित्र आत्मा हूं। क्योंकि जो भगवान के घर से आई, भगवान की संतान है, तो उसमें क्वालिटी किसकी होगी? भगवान की होगी। परमात्मा को हम प्यार का सागर, शांति का सागर, ज्ञान का सागर कहते हैं। हम दुनिया में देखते हैं किसी पंछी का बच्चा पंछी, पशु का बच्चा पशु, मनुष्य का बच्चा मनुष्य है, क्योंकि इसकी आकार आकृति रूप रंग प्रकृति और प्रवृत्ति वैसी ही होगी जैसे उसके माता पिता हैं। हम सब भगवान की संतान हैं, तो परमात्मा के बच्चे कैसे होंगे? वो प्यार का सागर, नेचुरल प्यार का गुण, दया का गुण, रहम का गुण हमारे अंदर कितना नेचुरल है कि हम अभी आ रहे थे, यहाँ डायरेक्ट ट्रेन होती है चंडीगढ़ से, तो उसमें रात के टाइम एक अनाउंसमेंट करते हैं कि रेवाड़ी से आगे कुछ ना कुछ वारदातें ज्यादा हो जाती हैं, तो इसीलिए रात को वो अनाउंस करके जाते हैं कि अपने सामान का, मोबाइल का, पर्स का ध्यान रखिएगा, तो ये अनाउंस करके गए तो कुछ एक लोगों के कुछ अनुभव थे, क्योंकि वो उस गाड़ी से रेगुलर पैसेंजर थे, आते जाते थे, तो बताने लगे कि पिछले हफ्ते ये एक व्यक्ति को, एक चोर को ऐसे पकड़ा, क्योंकि वो उस कोच में सारे के सारे फौजी और खिलाड़ी थे। तो जब उसको संदेह हुआ कि यही चोर है, तो उसने भागते हुए उसको बिल्कुल गेट से छलांग लगाने से पहले पहले उसने उसको लॉक किया और उसको पीछे कोच में लेकर आ गया, और उसके बाद बताया यही चोर है, और कई मोबाइल कई कुछ उसके पास था। तो उन्होंने कहा इसे मारो, तो वो थोड़ा शक्तिशाली थे तन से, तो उन्होंने एक ने दो ने शुरू किया। तो जो पैसेंजर्स मुझे सुना रहे थे तो कहते उन्होंने दो ढाई घंटे, क्योंकि ना पुलिस आ रही ना कुछ और था, तो उन्होंने उसी को भाई इसको ऐसे सबक सिखाएंगे, तो व्यक्ति को जैसा व्यक्ति को सूझता है उन्होंने किया। कहते हम नहीं देख पा रहे थे, मार वो रहे हैं, मार वो खा रहा है, परंतु कहते हम देख भी नहीं पा रहे हैं। तो मैक्सिमम लोग आप देखिए कि किसी कहीं कोई बहुत चिंता में है या बहुत क्षतिग्रस्त है, तो व्यक्ति एकदम से जैसे चलता हुआ कोई एक्सीडेंट देखा सड़क पे, हम रुकते हैं। पिछली वो वारदात याद करो जब आपने बहुत बुरा एक कोई एक्सीडेंट देखा था, क्या स्थिति क्या हालात थी उस व्यक्ति की जिसका एक्सीडेंट हुआ था, या तो उसने ऑन द स्पॉट शरीर छोड़ दिया था, या फिर उसको बहुत लहूलुहान था। उसमें आप सिर्फ देख रहे थे या आपने पार्टिसिपेट किया, आप उसे उठाए उसको लेकर गए। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, परंतु रुकने वालों की संख्या तो बहुत ज्यादा होती है, जो देखकर अंदर से एक सहज गुण रहम मर्सी अपने आप जागृत होता है, ये एक सहज सा स्वभाव है। तो मनुष्य आज भी प्रवृत्ति में वही है, ये नहीं दुनिया खराब हो गई है, कलयुग है, घोर कलयुग है, लोग नेगेटिव बातें फैलाते बहुत हैं, परंतु प्रैक्टिकल सी बात है, आज भी इंसान में दया प्यार रहम करुणा बहुत है, परंतु कलयुग का प्रभाव, एक्सीडेंट देख के रुकेंगे परंतु फिर देखते हैं टाइम हो रहा है, ऑफिस लेट हो जाएंगे, कौन पुलिस के चक्करों में पड़े, ऐसे ऐसे ख्यालात आते हैं, और धीरे 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 भीड़ छंटनी शुरू हो जाती है। और उसमें कोई रेयर वो समाज सेवक होगा जिस जो उसे अपना मानकर उसे उठाता है, उसकी हेल्प करता है, उसको फर्स्ट एड देता है, उसको हॉस्पिटल पहुंचाता है। तो आज हम देखते हैं कि मानव में मानवीय गुण है, परंतु वो गुण कहीं लुप्त प्राय इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उसे कहीं समाज का लोकलाज का बहुत चीजों का डर अंदर बैठ गया है। तो आज हम देखते हैं अतीत, अभी मैंने आपको कहा आप वो एक्सीडेंट याद कीजिए, तो आप सबको किस किस को याद आया कोई बुरा सा एक्सीडेंट देखा था, हाथ खड़ा करें, बहुत भयंकर भयानक सा एक्सीडेंट देखा था, सिर्फ देखा था। देखिए अब आपको वो सीन याद आया, क्या क्या हुआ था, वो सारी इंसिडेंट याद आया, तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं उसकी छाप गहरी या हल्की हर अतीत की रहती है। परंतु व्यक्ति परेशान वहां होता है, अब इंप्रेशन कैसा कैसा होता है, एक इंप्रेशन होता है पानी पर लकीर, बात आई देखी सुनी खत्म, तो पानी पर लकीर कितनी देर बैठती है, आई और गई। कुछ बातें कुछ घटनाएं कुछ संस्कार होते हैं जो रेत पे लकीर की तरह होते हैं, कुछ समय हमारे साथ होंगे और कुछ समय बाद विस्मृत होना शुरू हो जाते हैं, और कुछ बातें पत्थर पर लकीर की तरह होते हैं जो हम भूल नहीं पाते। पर आज विडंबना ये है कि व्यक्ति हर छोटी छोटी बातों को दिल पर पत्थर पर लकीर की तरह लगा देते हैं, हम भूल नहीं पा रहे हैं, उन्होंने बात ऐसे कह दी, उन्होंने हमें ये कह दिया। बात घटना कितनी पुरानी होगी, 4 साल पुरानी, 14 साल पुरानी या 40 साल पुरानी, इवन अब तक पास्ट का इंप्रेशन कैसे रहता है, और अतीत को भूलते नहीं और उसके कारण पारिवारिक सामाजिक संगठन की कितनी सारी समस्याएं बढ़ रही हैं। अब एक व्यक्ति जो लगभग छोटी छोटी बातों में घर में ताना मार देता था, देखा था, वो कहेगा ये मैनेजमेंट ठीक नहीं है, बच्चे हो गए, बच्चों के भी की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है। अब वो मैडम जब भी मिसेज उनकी बोलती थी ना कि ये देख लो टाइमली उठता नहीं है, ये नहीं करता, वो नहीं करता, कुछ भी बात समझाने करने लगती या कहती थी प्लीज आप इन्हें समझाइए ना बच्चों को, या किसी भी बात में टाइम की समय प्रबंधन की कोई बात करते ना, तो पतिदेव बोलते थे हाँ देख लिया था मैंने तुम्हारी अपनी शादी में, बड़े तुम्हारे पिताजी ने बोला था हमारा ये टाइमली प्रोग्राम है, टाइम टू टाइम मिनट टू मिनट प्रोग्राम ये है, तो मैंगो शेक तो फिर भी नहीं मिला था। अब वो बात घटना कम से कम 35 साल पुरानी है, 35 साल में बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो रहे हैं, सब कुछ देखिए, परंतु अब उसको वो घटना बार 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 क्यों याद कराते हैं। जब शादी हुई तो पिताजी उनके, लड़की के पिताजी कर्नल थे और बहुत ज्यादा पंक्चुअल और बहुत एक्टिव, तो उन्होंने सारा का सारा शादी का मंडप तक जाने का, बारात ऐसे आएगी, सब कुछ टोटल प्रोग्राम लिस्टेड मिनट टू मिनट प्रोग्राम दे दिया और बाकायदा वैसा ही शुरू हुआ। कहाँ कहाँ बारात रुकेगी, कहाँ कहाँ उनको नींबू पानी शरबत मैंगो शेक क्या क्या दिया जाएगा बीच में स्नैक्स, वो सारा भी लिस्ट में था। तो हुआ ऐसा कि जब पंजाब के पास बारात पहुंची, और पंजाब में अक्सर बिजली गुल हो जाती है, और ये बाय चांस था कि जनरेटर का इंतजाम उस होटल में उस रिसेप्शन पर नहीं था, हो नहीं पा रहा था, और ध्यान भी नहीं गया, बाकी सब जगह सब चीजों का प्रबंध बहुत व्यवस्थित था, बहुत अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, सब कुछ समय पर हो रहा था, परंतु एट लास्ट जब लास्ट जहां पर बारात ने मैंगो शेक लेना था वहां पर बिजली चली गई, मैंगो शेक भी पूरा तैयार नहीं था। तो ऐसी कुछ घटना हुई कि उन्होंने बहुत फास्ट कहा कोई बात नहीं कुछ और अरेंजमेंट करो, उसके पिताजी ने टेट्रा पैक मंगवाने की ये करने पर, इसमें 5-7 मिनट सब लेट हो गया, फिर आगे वो सब प्रोग्राम वैसा ही लेट चलता रहा। तो अब आप सोचिए जो घंटों तक प्रोग्राम अच्छे चलते रहे परंतु कुछ मिनट वो प्रोग्राम आगे पीछे हुआ, समय थोड़ा सा गया, परंतु क्या फर्क पड़ता है, शादी हो चुकी, बच्चे हो गए, सब कुछ बहुत अच्छा है, लड़की संस्कारी है, परिवार अच्छा है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, परंतु बीच बीच में टॉन्ट, बीच बीच में ये ताना, बचपन से मतलब जब से उसकी शादी हुई, शादी के तुरंत बाद कभी उसकी माँ उसको बोल देती थी, कभी उसके पिताजी, कभी पतिदेव, हमेशा एक ताना मार देते थे। अच्छा फिर उस मैंगो शेक का क्या हुआ, अब आप सोचिए एक पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी में अंतर क्या होता है। पॉजिटिविटी ये है कि कुछ भी हो रहा है उसमें अगर 90% भी खराब हुआ, 10% भी अच्छा है, तो व्यक्ति 10% ढूंढ लेता है, निकाल लेता है, खुश हो लेता है, चलो ये तो अच्छा है। और नेगेटिविटी ये है, नेगेटिव माइंड हमेशा ये करता है कि 90% अच्छा होगा, 10% भी खराब हुआ तो उसका फोकस 10% पर रहता है, और वो 10% उसको कब तक दुख देता रहेगा, जब तक उसकी स्मृति बनी रहेगी। अब वो पास्ट को पास्ट होने नहीं देते, तीन पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, समय के ये तीनों काल जब बताए जाते थे, भूत वर्तमान और भविष्य, तो उन तीनों में आप समझ कर देखिए, वर्तमान जिसको हम प्रेजेंट बोलते हैं, प्रेजेंट में व्यक्ति कितना सुखी खुश उमंग उत्साह से भरपूर रहता है अगर वो प्रेजेंट में है तो, और अगर वो प्रेजेंट में बैठा पास्ट की घटनाएं पास्ट की बातें याद करता रहता है तो क्या होता है, वो आज भी उसी समय को वर्तमान में जी रहा है, ले रहा है, भले अब उसका कोई अंश मात्र भी नहीं है, वर्तमान को छू नहीं रहा। व्यक्ति कभी उस ट्रोमा, उस ट्रेजेडी, उन बातों को याद करता रहता है कि हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, हमारे साथ ये हुआ, ये अनर्थ हो गया। अब आप सोचिए, वो सारा दिन कभी अनर्थ और फालतू जितने भी नेगेटिव शब्द हैं उनका प्रयोग ज्यादा करता है, बहुत बुरा हाल है, जबकि अब नहीं है, वर्तमान ठीक चल रहा है, वर्तमान वो सब बातें सुधर गई, संबंध सुधर गए, सब कुछ अच्छा हो गया, पर आज भी शब्द वही प्रयोग हो रहे हैं, आज भी उस अतीत को भूल नहीं पाते, तो व्यक्ति किस प्रकार से अपना वर्तमान खराब कर रहा है। तो आज हम देखें, अभी परसों ही कोई मिले, बड़े बिजनेसमैन थे और आते थे, पहले रेगुलर क्लास कर रहे थे, मैंने कहा आप आजकल आ नहीं रहे हो, बहुत बुरा हाल है, बड़ा बुरा हाल है। मैं कहा क्या हुआ, बच्चों को टाइम ही नहीं मिलता। फिर उसने शुरू किया, हर छोटी छोटी बात पे कहता, कुछ डाउट क्लियर करने होते थे तो उस डाउट को डाउट ना कह के, मेरी समस्या ये है, मेरी प्रॉब्लम ये है, आप मेरी प्रॉब्लम सुलझाओ। अब वो बार बार समस्या, प्रॉब्लम, बुरा हाल, इतने सारे वर्ड, वो एक मिनट में कितने वर्ड यूज कर रहा था। फिर कहते मुझे नींद नहीं आती है। अब आप सोचिए, नींद आएगी? पूरे दिन का प्रभाव रात पर पड़ता है, और अच्छी या बुरी जैसी भी नींद होगी उसका प्रभाव दिन पर पड़ता है, अगले दिन। अब आप सोचिए, अगर आपने पूरे दिन में नेगेटिव शब्दों का प्रयोग ज्यादा किया तो उस अतीत का प्रभाव फिर आज वर्तमान पे, आज पर फिर रहेगा, क्योंकि जो मेरा वर्तमान है वही अतीत पास्ट हो जाएगा, हम यही कहेंगे ना। अभी थोड़ी देर बाद ही अगले लेक्चर में भी कहेंगे, हाँ वो लेक्चर इतने बजे हुआ था, उस लेक्चर में ये सुना था, पास्ट टेंस यूज करेंगे, था। अभी थोड़ी ये क्षण बीता और पास्ट हो गया, आपने कितने बजे चाय पी थी हो गई, हर अगला क्षण उसे पास्ट करता जाएगा। तो इसीलिए हमारे पास सिर्फ वर्तमान अर्थात कि एक क्षण है, सिर्फ आज का दिन है, हमें कल का भरोसा नहीं, कल मैं आपसे मिल पाऊंगी या नहीं मिल पाऊंगी, कल हम मिल पाए या नहीं मिल पाए। आप प्रैक्टिकल देखिए, हमारे पास सिर्फ आज है, और आज को हम कैसे जी रहे हैं, पुरानी बातें, पुरानी वारदातें, पुराने संबंध, पुराने संस्कारों को लेकर अभी तक घसीटा हुआ है, और वही संस्कार वही बातें आज भी मुझे तंग कर रही है। आपने कितने संस्कारों से परेशान है व्यक्ति, परंतु अपने संस्कारों को भी तो भूल नहीं पा रहा। चेंज कब होगा, परिवर्तन कब होगा, जब वो आज में आए। तो आज को भरपूर जीना है, जिंदा दिली से जीना है, तो इसीलिए हर पिछली बात को, पिछली घटना को, बीती सो बीती। यहां हम हर रोज जो गॉडली वर्शन सुनते हैं उनमें हमें एक बात बहुत अच्छी तरह पक्की कराई गई है, पास्ट इज पास्ट, यानी जो बीत गया उसे भूलने के लिए एक शब्द है, बिंदी लगा दो, बिंदी माना फुल स्टॉप। ठीक है, अब ये प्रैक्टिस करके देखते हैं, फुल स्टॉप। तो फुल स्टॉप क्या होता है, जहां पर वो लाइन खत्म हो गई, जहां वो पैराग्राफ एंड हो गया, अब एक नया पैराग्राफ शुरू होने वाला है, अब एक नया चैप्टर शुरू होगा, फुल स्टॉप। जो हो गया उस पर कोई कोमा, कोई एक्सक्लेमेटरी, कोई और चिन्ह नहीं है, कोमा के बाद लाइन कंटिन्यू रहती है, क्वेश्चन मार्क के बाद भी आगे उसका आंसर ढूंढा जाता है, परंतु फुल स्टॉप मीन्स फुल स्टॉप। तो आज हम एक प्रैक्टिस करेंगे, जो बीत गया बिंदी लगा दें, अर्थात जो हो गया फुल स्टॉप। अब अपना नाम लेकर, ठीक है, कोई भी अपना नाम, आपका नाम क्या है बहन जी? निर्मल, निर्मला, ठीक है। अब दिन भर में क्या होगा कि जैसे ही हमें कोई ना कोई पिछली पुरानी बातें याद आ रही हैं, मन में उलझन चल रही है, मन के अंदर लगातार विचारों की बाढ़ आ रही है, तूफान मचा हुआ है मेरे अंदर, ऐसा क्यों हुआ, ऐसे कैसे कर दिया, ऐसे क्यों करते हैं, कब तक ऐसे होगा, क्यों, क्या, कैसे, कहां, कब तक, प्रश्नों की बाढ़ आती है, तूफान मचता है, तो आपने तुरंत अपने आप को कहना है निर्मला फुल स्टॉप. क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जोर से बोल के बताइए. अपना नाम लेके कहना फुल स्टॉप. अपना अपना नाम लेके सिर्फ अपने को एक छोटी सी प्रैक्टिस करानी है और दिन में कम से कम 15-20 बार आपको ये करनी पड़ेगी. शुरू में जो कुछ बीता आज वो नहीं है और ना वो आएगा. हमारे पंजाबी में एक बात कहते होते हैं, एक बच्चा उसकी मम्मी कोर्स करने आई, उसकी मदर अब रोज अच्छी अच्छी बातें सुनती थी, कुछ बातें घर में चर्चा कर लेती थी. बच्चे मस्त होते हैं, खेलते कूदते हमें दिखते हैं, पर एक्चुअली वो अलर्ट और एक्टिव बहुत होते हैं. तो फिर उन्होंने कोई बात पिछली छेड़ी, फिर कहता अपनी मम्मी को, मम्मा जी तुसी कानू चिंता कर दे हो, कि आप चिंता क्यों कर रहे हो, जो गल हो गई, जो बात हो गई वो अजय आनी नहीं, वो अब दोबारा नहीं आएगी. फिर कोई बात में टेंशन करती तो कहते जो अजय होया ही नहीं, यानी भविष्य जो अभी आया नहीं है, जो अजय होया नहीं ओंदी का नू चिंता करनी, यानी जो हो चुका उसकी क्या चिंता करनी, वो तो अब आएगा नहीं. जो अजय होया ही नहीं ओंदी का चिंता करनी. अब आप सोचो चिंता किसकी करनी है फिर, हमें तो आदत है भी चिंता तो करनी होती है. जहां कुछ ना कर सके इंसान तो क्या करे, कुछ नहीं कर सकते आप. कई परिस्थितियां, कई सिचुएशन ऐसी होती हैं जो आपके हाथ में है ही नहीं, तो क्या करता है, कुछ नहीं कर सकते, थोड़ी टेंशन तो कर ही लेना. चलते फिरते बोलते हैं बस मुझे बहुत टेंशन हो रही है. क्या आप उसका कुछ कर सकते हो, उस घटना, उस बात, उस सिचुएशन के लिए कुछ कर सकते हैं आप? कुछ नहीं कर सकते. फिर क्या करते हैं, करना तो है ना, फिर भी कुछ तो करें. तो क्या करें, क्या करें, टेंशन करें. इतना कॉमन शब्द है ये, बच्चा बच्चा आज इसका इतना हैबिचुअल हो चुका है, हर छोटी छोटी बात के लिए मम्मा मुझे ना टेंशन हो रही है, उसको टेंशन के स्पेलिंग आते नहीं है, और हर बात के लिए वो नर्सरी का बच्चा भी आजकल टेंशन टेंशन बोलता है, क्योंकि वो सुनता है, उसके आसपास ही परिवेश है, उसको वो चीजें सुनकर देखकर पक्की हो गई है. तो व्यक्ति अपने आचरण और व्यवहार से भी बहुत चीजें सिखाता है. अब उसकी मम्मी, थोड़ा सा बच्चा लेट हो जाता है, पता है तूने बताया नहीं, तूने फोन नहीं किया, पता है मेरे को टेंशन हो रही थी. अब आप सोचिए उस बच्चे को लगा फिर क्या होगा, खेल रहा था तो लेट होना ही था, स्वाभाविक है, 15 मिनट लेट हो गया तो, आधा घंटा लेट हो गया स्कूल से आते. आप उस जमाने को याद कीजिए जब ये मोबाइल नहीं थे, तब भी हम और आप लेट हो जाते थे, या हमारे परिवार के सदस्य लेट हो जाते थे, क्या सोचते थे कि 7 बजे शाम को घर आ जाते हैं, 7:15 हो गए अभी तक आए नहीं, तो क्या सोचते थे, क्या कहते थे, चलो आ जाएगा बस, इतना कह के निश्चिंत हो जाते थे और अपने काम में लग जाते थे. आजकल पता है क्या करते हैं, फोन तो करो, फोन किया, बच्चा ट्यूशन पर था, ट्यूशन से आया क्यों नहीं, फोन करो, फोन स्विच ऑफ. आपकी संकल्पों की गति, थॉट्स की स्पीड बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी. फिर आपने सोचा अभी तक नहीं आया, इतना लेट तो कभी नहीं होता, चलो उसके दोस्त को फोन करती हूं, उसके दोस्त का आउट ऑफ कवरेज एरिया. फिर दूसरे दोस्त को किया, वो कहते आंटी आज तो मैं ट्यूशन गया ही नहीं. फिर उसके टीचर को फोन किया, मतलब जितने कॉन्टेक्ट से आप कोशिश करोगे कहीं ना कहीं से मैं फोन कर लूं, नहीं हो रहा. अब आप सोचिए उस जमाने को और आज के जमाने में अंतर क्या है. मोबाइल ने टेंशन फ्री करने के लिए था, साधन हमें मिले जिनसे हम निश्चिंत रहें, परंतु उन साधनों से हम ज्यादा टेंशन में आ गए. तो क्या करना है, ये नहीं कि साधन प्रयोग ना करो, परंतु मन का एक स्वाभाविक सा नियम बना दें, इट्स ओके, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, आ जाएगा. जितना रिलैक्स, जितना इजी रहेंगे तो इजी होता जाएगा. जो स्वभाव में सरल है उसकी सब समस्याएं भी सरल हो जाती है, हमें तो हमेशा ये सीखने को मिला है. जो स्वभाव में सरल है, इजी नेचर, उसके सब कार्य भी तब समस्याएं भी सरल होती जाती हैं। ओके, नोट कर लीजिए इस बात को। अब हम करते क्या हैं, जब भी हमको कोई बात, पिछली पुरानी बातें लेकर मन में हम दूसरे व्यक्ति से मिलते हैं, या अभी वो व्यक्ति नहीं मिला, कोई और व्यक्ति बीच में मिल गया, हमने पता उससे बात शुरू कर दी, पता ऐसा हुआ, उसने ये कहा, उसके साथ ये हुआ, अब हमारे थॉट्स की इंटेंशन और डायरेक्शन क्या है, हमारे थॉट की इंटेंशन और डायरेक्शन वातावरण क्रिएट करती है। अगर मेरे मन में कुछ बुरा भाव है तो मैंने उसके मन में भी डाल दिया, फिर उसने किसी और से बात की, उसने किसी और से बात की, तो बातें आगे बढ़ती गई और एक वातावरण क्या क्रिएट कर दिया, टेंस्ड एटमॉस्फेयर। या दुखी था, मैं दुखी हूं उस व्यक्ति से, उस बात से, उस घटना से, मैंने अपना दुख शेयर किया, तो हम बातें 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 बोलते रहते हैं, हम फ्री बैठे हैं ना, तो फ्री बैठे तो कोई बात ही छेड़ लो, और हम बातें कौन सी कर रहे हैं, बड़ी पॉजिटिव, बड़ी एलिवेटेड, है ना, बड़ी मोटिवेशन देने वाली बातें कोई करता है? आप इतना सफर करके आए ट्रेन में, प्लेन में, आपको कैसे लोग आसपास दिखाई दिए? आप स्वयं को भी देखना, आपने कौन सी बातें की इतने घंटों तक, तब हमें समझ में आता है कि एक्चुअली हम अपने मन को डस्टबिन बना रखा है। किसी ने आके मुझे कह दिया, मेरे मन में चली वो बात, मैंने जाकर दूसरे या तीसरे को जाके घटना शेयर कर दी, उसने उसके मन में भी नहीं पच रही, डाइजेस्ट नहीं हो रहा, उसने अपने नजदीकी, अपने अजीज को वो बात सुना दी, वो अपने किसी अजीज को सुनाता है। अब देखिए, भगवान जो शांति प्यार का सागर है ना, तो अंदर हम भी आत्मा ओरिजिनली शांत, स्वच्छ और पवित्र हैं, पर वो पवित्रता ही है जो मैं अंदर गंदगी रखने ही नहीं दे रहा। मेरे मन में आई, मुझे कुछ सुनाई दी कोई बात, तो मैंने जाकर किसी और की, यानी मेरे मन में उसने कचरा डाल दिया, मैंने वो कचरा ट्रांसफर कर दिया। जैसे ही मैंने कचरा ट्रांसफर किया, किसी और को दिया, तो उसने आगे, उसने आगे, उसने आगे, मतलब रखता कोई नहीं अपने पास। तो सहज स्वभाव है, आत्मा पवित्र स्वरूप है, तो अब हमें अपने इस गुण को हमेशा अपने सामने रखना है, मैं पवित्र स्वरूप हूं। और एक चीज एक्सेप्टेंस बढ़ा लेंगे, एक्सेप्टेंस स्वीकार करने की शक्ति, जो घटना, जो बातें हुई, जो व्यक्ति था, उसको एज इट इज एक्सेप्ट करें, स्वीकार कर लें, चाहे घर की बहू हो या बेटा हो या सासू हो या कोई भी हो, व्यक्ति आए तो हम ये ना कि ये ऐसा क्यों नहीं करती है, ये ऐसा क्यों करता है, नो क्वेश्चन। अब जो जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार करना है, खुशी से या दुख से, दो ही चीजें हमारे पास ऑप्शन है, दो ऑप्शन है, हंस हंस के या रो रो के, ठीक है, अभी अभी ऑप्शन चूज कर लें। कार्य तो करना है, संबंध तो निभाने हैं। अब आपका पहला ऑप्शन हंस हंस के, दूसरा ऑप्शन है रो रो के, क्या करेंगे? ओके, अब इसको बार बार सारे दिन में प्रयोग करना और कहना कि जो भी करना है हंस हंस के करना है, संबंध तो निभाने हैं, पर बोलिए, नौकरी तो करनी है पर रो रो के नहीं, जो करना ही है तो एक्सेप्टेंस, उसे स्वीकार करो, तो उसको खुशी से आगे बढ़ाएं। तो एक है स्वीकार करने की शक्ति बढ़ाएं, जिससे हम वर्तमान में जीना शुरू करें, ताकि पास्ट की घटनाएं, बातें मेरे अंदर कोई पेन, ब्लेम, ये सब क्रिएट ना करें। जैसे ही मेरे अंदर ब्लेमिंग नेचर, पेन शुरू होता है ना, मैं परेशान दर्द में हूं, तो मेरे अंदर की खुशी, शांति, आनंद कब चोरी हो जाता है पता ही नहीं लगता। इसीलिए अपने आप को उन सब घटनाओं से मुक्त करें। और दूसरा, लेट गो करने में, फॉरगेट एंड फॉरगिव करने में चीज बहुत अच्छी है, फ्लोइंग, फ्री फ्लोइंग रहें। पानी जब तक तरल है, सरल है, बहता है, वो स्वच्छ रहता है, पानी कहीं अटक गया तो बदबू आने लगती है, इन्फेक्टेड हो जाता है। तो मेरे मन में भी आज मेरे पास ये पेन है, मैं पेन को होल्ड कर लूं तो क्या होगा, थोड़ी देर में पेन भारी नहीं होगा पर हमारा हाथ भारी हो जाएगा क्योंकि मैंने इस पेन को जैसे होल्ड किया है और जितनी देर होल्ड किया है उतनी देर मुझे ये पेन क्रिएट करेगा। ऐसे ही वर्तमान की जगह हम पास्ट की बातों को होल्ड किया हुआ है तो वो बातें मेरे अंदर पेन क्रिएट कर रही है, बोझिल कर रही है, परेशान हो रही हूं मैं क्योंकि मैंने होल्ड किया है। तो आज से होल्डिंग नेचर बंद। जो अब तक होल्ड किया हुआ है, सीधे बैठेंगे सभी, एक सेकंड में अपने अंदर की वो सब बातें सामने, बाबा का चित्र दिख रहा है, सर्वशक्तिमान को इमर्ज करना और सारी बातों को तुरंत जितनी होल्ड की हुई थी उनको मैं आज यहीं छोड़ती हूं। मन को फ्री फ्लोइंग बना दें। जिन बातों ने मुझे दर्द दिया और परेशान किया आज इस सुंदर पवित्र स्थान पर अपने मन को पवित्र करती हूं और सब बातों को यहीं छोड़ती हूं। ओम शांति।
ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आदरणीय पूनम दीदी जी का। करतल ध्वनि से बहुत धन्यवाद करेंगे। आप सबने बहुत सुंदर टिप्स सुना कि अतीत को ना भूलने के कारण अपने लाइफ को सुंदर हम नहीं बना सकते। हम सभी समाज से भी बैठे हैं और हम खुद समृद्ध और सशक्त नहीं होंगे तो लोगों की सेवा हम कैसे कर पाएंगे। उसका जीना जीना है जो दूसरों के लिए जिए। लेकिन कई बार हम अपनी ही जीवन को ठीक करने में लगे हैं तो लोगों की सेवा कैसे करेंगे। समाज की हर प्रकार से सेवा करने के लिए खुद के मन को सशक्त बनाना होगा। हम ये देखें कि हम अपने लिए कितना समय देते हैं और दूसरों के लिए कितना समय देते हैं। और जितना हम समस्याओं का वर्णन करते हैं उतना ही हम समस्याओं का आह्वान करते हैं। तो आज ही हम संकल्प करें कि हमें कभी नेगेटिव बातों का, समस्याओं का वर्णन नहीं करना है। खुद को हल्का करने के लिए, जैसे पूनम दीदी ने बताया कि परमात्मा पिता को ही अपनी बातें शेयर करें और हल्के हो जाएं। पेड़ अपने सूखे पत्ते गिराकर सिखाते हैं आत्म लाभ के लिए आत्म त्याग करना, पर इंसान क्यों नहीं सीख पाता अपने बुरे अतीत का परित्याग करना। अतीत चाहे कितना भी बुरा हो, आप हमेशा एक नई शुरुआत कर सकते हैं। तो अब हम मीना दीदी के लिए कुछ शब्द बोलना चाहेंगे। इंचार्ज ब्रह्मा कुमारीज एरोली सेंटर मुंबई। आप पिछले 38 वर्षों से ब्रह्मा कुमारीज से जुड़े हुए हैं। आपने आध्यात्मिक शिक्षा और आत्म परिवर्तन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप एक सम्मानित वक्ता भी हैं और आपने अपने ज्ञान की गहराई से कई आत्माओं को आंतरिक शांति और संघर्षों से मुक्ति प्राप्त करने में सक्षम बनाया है। आपने नेशनल इन्फ्लुएंसर के रूप में सरकारी और गैर सरकारी दोनों संस्थाओं को लाभ पहुंचाया है। आपने व्यक्तिगत विकास और आध्यात्मिक विकास पर केंद्रित कई वर्कशॉप्स एंड सेमिनार का आयोजन एवं नेतृत्व भी किया है। आप सामुदायिक आउटरीच में सक्रिय रूप में लगी हुई हैं, जो मानव जाति में प्रेम और सद्भावना का संदेश फैलाती है। आपके मार्गदर्शन में ब्रह्मा कुमारीज के नए सदस्यों को अमूल्य परामर्श प्राप्त होता है। आप एक होलिस्टिक वेलबींग एडवोकेट भी हैं। आप राजयोगा एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन की सोशल विंग की सदस्य हैं, जो ब्रह्मा कुमारीज की एक सहयोगी संस्था है। आपने विभिन्न विषयों पर व्याख्यान भी दिए हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट, पॉजिटिव थिंकिंग और मेडिटेशन। आपने आध्यात्मिक शिक्षा और व्यक्तिगत विकास में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देते हुए विभिन्न संस्थानों से कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए हैं। कुछ उल्लेखनीय सम्मानों में शामिल है सोशल एड्रेस अवार्ड बाय नेशनल कांग्रेस पार्टी, सोसाइटी एनलाइनमेंट अवार्ड बाय नेशनल यूथ कांग्रेस दिग्दे, ऑनर फ्रॉम सरपंच श्री दागदू भाव पटेल पाटिल सोशल ऑर्गेनाइजेशन, अखिल भारतीय बाल व्यक्तित्व विकास शिविर रजत जयंती समारोह में सम्मान, तो हम आदरणीय मीना दीदी जी से अनुरोध करेंगे कि वो आकर अपना मंतव्य हमारे भाई बहनों के सामने रखेंगे। और दीदी के लिए हम दो शब्द बोलना चाहेंगे, सुखदाता के बच्चे हैं, सुखदेव कहलाती हैं आप, अंधियारे में हीरे मानव को सत्य ज्ञान प्रकाश की ओर ले जाती हैं आप, आदरणीय मीना दीदी जी।
ओम शांति। हम सभी जानते हैं परमपिता परमात्मा शिव जो ये सृष्टि का रचयिता है, आज उन्हों की परम कृपा से हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, खुले हृदय से मन चासीन सर्व महानुभाव तथा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं सम्मान है। आज बहुत सुंदर विषय है फ्रीडम फ्रॉम पास्ट। मानव जीवन तीन कालों में जीता है, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट ऐसा है जिससे जितना ही हम याद करते रहे करते रहे करते रहे, परंतु आखिर उसकी वैल्यू क्या है। हम सब जानते हैं पास्ट के लिए कहा जाता है कैंसल चेक, राइट? पास्ट इज अ कैंसल चेक। और फ्यूचर क्या है? प्रॉमिसरी नोट है। क्या ये दोनों से हम कुछ प्राप्त कर पाएंगे? कैंसल चेक लेकर के घूमते, बड़ी खुशी है अंदर में, मेरे पास 5 करोड़ का चेक है, लेकिन क्या एक बिस्किट का पुड़ा भी मुझे उससे खरीदने को मिलेगा? यस और नो? नो। इसके साथ साथ मेरे पास प्रॉमिसरी नोट है, क्या उससे कोई फर्नीचर खरीद सकेंगे? यस और नो? नहीं। लेकिन आज का जमाना है प्रेजेंट का। प्रेजेंट को कहा जाता गिफ्ट। मानव जीवन एक भगवान की ओर से हम सबको प्राप्त गिफ्ट है, समझ रहे हैं हम सब? मानव जीवन गिफ्ट है, जिसके लिए दूसरे शब्दों में कहा जाता है पास्ट यह सपना है, भविष्य यह कल्पना है और वर्तमान ये अपना है। है सबके पास? है सबके पास? भगवान ने हर किसी को प्रेजेंट समय दिया है, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, हर किसी के पास 24 घंटा है। है कोई है जो कहे मुझे कम है? नहीं। परंतु देखिए जरा अपने अंदर में, मैं प्रेजेंट में कितना कार्य कर रहा हूं। एक सर्वे बताता है आज का मानव 65% पास्ट में जीता है, 25% फ्यूचर में जीता है, तो बाकी वर्तमान के लिए कितना बचा? कितना बचा? ओनली 15%। अब इस 15% में मुझे अपनी लाइफ बनानी है। एक बहुत बात अच्छी सब अपने मन में अंदर ठान ले कि जीवन बनाने के लिए है, जीवन बिताने के लिए नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? टाइम पास कर रहे हैं, राइट? भगवान परमात्मा शिव पिता हमें सिखाते हैं बच्चे पांच शब्द के तीन अर्थ हैं। एक तो सदा भगवान के पास रहो, दूसरा जो कुछ बीत गया माना पास हो गया, पास्ट इज पास्ट, और हर चीज सिचुएशन में मुझे पास होना है। पसंद है ये तीन पास सबको? हाँ, ये पास खो नहीं देना, सदा अपने साथ रखना है। तो इसलिए ये तो मुझे पता है कि हम पास की बातों को ज्यादा याद करते, क्या वो पास की बातों से मेरे मन और तन पर कुछ इफेक्ट हो रहा है? होता है कि नहीं होता है? पास्ट की बातों को जितना हम याद करते हैं उतना हमारी मेमोरी लॉस होती है। क्या होता है? मेमोरी लॉस होती है, दिल की धड़कनें बढ़ती है, एज अ रिजल्ट हमारा बीपी बढ़ जाता है, हार्ट प्रॉब्लम्स हो जाते हैं और बहुत सारी बातें हैं। भगवान कहते हैं, बहुत सुंदर एक गीत ब्रह्मा कुमारी का है, जैसा सोचोगे तुम वैसा ही बन जाओगे। जो मुझे चाहिए, याद रखिएगा, हम अपनी लाइफ में जो चाहते हैं जैसा चाहते हैं उसका मन के अंदर एक पिक्चर बना लीजिए और बार बार उसको विजुअलाइज कीजिए, अपने लक्ष्य पर पूरा फोकस कीजिए, रिजल्ट आपको क्या मिलेगा? जो चाहते हैं वही मिलेगा, राइट? है एग्री? कौन कौन एग्री है? यस। अगर समझ लीजिए, हम पास्ट का बार बार सोच रहे हैं, है ना? बार बार दिन में कितनी बार पास्ट का सोचते हैं, इसके कारण क्या होता है? संबंधों में दरारें आ जाती है, संबंध बिगड़ जाते हैं, अच्छे भले काम होने वाले बिगड़ जाते हैं, हमारे सफलता जहां हमारे कदम चूमने पर आती है वो कोसों दूर चली जाती है। क्यों? पास्ट। पास्ट माना भूत है। भूत से डर लगेगा? भूत से कोई मित्रता करेगा? करेगा? नहीं करेंगे ना। तो इसलिए आज से हम ये याद करें। देखो, हमारे पास कैलेंडर है, घड़ी है, वो हमें क्या सिखाता है? कैलेंडर में आप कभी रोज पन्ने आगे पल चेंज करोगे या पीछे की तरफ जाओगे? आज कौन सी डेट है? 19 है। कल क्या कहेंगे? 20 है, फिर 21 है। अपना प्लान क्या करोगे आगे का, है ना? घड़ी भी हमें क्या सिखाती है? आगे का, पीछे की मुड़ नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि जो पीछे रहता है वो सदा दुखी होता है, और जो इधर उधर देखता है वो सदा चिंतित रहता है, और जो एकाग्र है, अपने लक्ष्य कदमों को आगे बढ़ाते रहता है, तो वह है, उसके अंदर कौन सी क्वालिटी होगी? विश्वास। हम सबके अंदर कौन पनप रहा है? दुख की फीलिंग ज्यादा है, हम चिंतित ज्यादा रहते हैं, या विश्वास से आगे बढ़ते हैं? भाइयों बहनों, आज का सुंदर दिन है, हम सुंदर परिसर में बैठे हुए हैं, अपने आप में विश्वास कीजिए, परमात्मा शिव बाबा में विश्वास कीजिए कि मैं उनका बच्चा हूं, भगवान के हाथ में मेरा हाथ आया है, अब दिनों दिन मेरी प्रगति ही प्रगति है, सफलता ही सफलता है। पसंद है? परंतु उसके लिए क्या करना होगा। पास्ट को भूलना तो सबको पसंद है और चाहते हैं सब पास्ट को भूल जाएं हम, लेकिन कैसे भूली। पास्ट में कौन रहता है जिसके पास कोई नई दिशा नहीं है। पास्ट मानव जीवन को पसंद नहीं है। अक्सर घर में भी देखिए रोज एक ही प्रकार का भोजन हमारी मातोश्री हमें खिलाते रहे तो हम क्या करते हैं, अरे मम्मा कुछ चेंज तो करो है, और नहीं मम्मा करती है तो हम क्या करते हैं, होटल में खा के आते राइट। परंतु इसका भावार्थ क्या है, मानव की प्रकृति है, मानव की संस्कृति है, मानव की कृति है परिवर्तन की। जो व्यक्ति के पास कोई काम नहीं होता है वो पुरानी बातों को सोचता रहता है, लेकिन जो सदा बीसी रहता है वो आगे की बातें सोचता है राइट। तो आज से पक्का करें जो यहां पुरानी बातें है उसको डिलीट करने के लिए मुझे नए नए प्लानिंग करना है, क्रिएटिव बनना है, कुछ नया सोचना है, नया पढ़ना है, नया करना है, नए एक्सपीरियंस को शेयर करना है, पॉसिबल है। इसलिए यहां ब्रह्मा कुमारी संस्था में, संस्था नहीं दिस बेटर है, परिवार है हमारा, पिताश्री हम सबको रोज 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 नए नए महावाक्य सुनाते हैं जिससे हमारी आत्मा हमारी स्पिरिट हम जो है वो शक्तिशाली बनती है। आप सभी भी यहां से अपने अपने स्थान पर जाकर लोकल सेंटर पर विजिट कीजिए और वह मुरली जिसको कहते हैं गॉडली वर्सन्स वो जरूर सुनिएगा। तो सदा हम क्रिएटिव बनते रहे। दूसरी बात है देखो मानव नया चाहता, इसलिए क्या है रोज वहीं वहीं पर रहते हैं, कहते चलो कुछ चेंज करते हैं। इस भावना से क्या करते हैं, कहीं हिल स्टेशन पर चले जाते हैं, नई प्रकृति मिलती है, नए सीन्स मिलते हैं, नए लोग मिलते हैं। तो इस तरह से हम अपने अंदर में वो न्यूनेस क्रिएट करें। साथ साथ में एक बहुत सुंदर बात भगवान हमको सिखा रहे हैं, रोज हम अपना पोता मिल देंगे, सुबह से लेकर के रात्रि तक मैंने क्या सोचा, मैंने क्या देखा, मैंने क्या किया, और उसके बाद जहां हमको लगता है कि मैंने ये कुछ गलत किया है या पास्ट में चले गए हैं, तो नेक्स्ट डे क्या करना, नया प्लान बना लेना। तो जरूर है कि पास्ट की बातों से हम फ्री हो सकते हैं। अपने लक्ष्य को मजबूत रखें। और सुंदर ही कहें कला भगवान सिखा रहे हैं हम भगवान को पत्र लिखें। लिखते हो पत्र भगवान को कभी, अपने लक्ष्य को मजबूत करने के लिए भगवान को पत्र लिखें। आज मैंने क्या किया और कल मुझे क्या करना है। और मेडिटेशन, मेडिटेशन क्या है, कंटिन्यूअस रिलैक्स माइंड को रिलैक्स करता है। एक घड़ी दो घड़ी समय निकालिए, अपने भीतर में चले जाइए, ये भौतिकता से अंदर आ जाइए और अपने आप को अनुभव करें कि मैं बहुत शांत स्वरूप आत्मा शुद्ध पवित्र आनंद मैं हूं, शक्ति स्वरूप हूं। और जितना ये अभ्यास करेंगे अनुभव करेंगे आप में वो नई ऊर्जा तैयार होगी, पिछली बातों को भूलते जाएंगे और आगे के लिए बहुत सुंदर सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो इन्हीं शुभाशा के साथ हम सब अपने अंदर में दृढ़ संकल्प करें कि आज से मैं अपने विचारों को, अपनी दृष्टि को, अपने बोल, कर्म और व्यवहार को आगे की ओर ले जाएंगे और सफलता को प्राप्त करेंगे। परमात्मा शिव से मुझे वरदान प्राप्त है, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ओम शांति। थैंक यू।
ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय मीना दीदी जी का। अब आज के इस प्रथम सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में मंच पर विराजमान हमारे आदरणीय डॉक्टर देव ज्योति शर्मा जी, आपके विषय में मैं कुछ परिचय देना चाहूंगी। आपकी आयु 55 वर्ष है, आपके शिक्षा क्षेत्र में बहुत रुचि रही है, इसलिए आपने कई डिग्रियां हासिल की है, MBBS, DPM, DCMH, PGCP, PGDPC, PGCAH, कई प्रकार की ऐसी डिग्रियां, MA साइकोलॉजी, ऐसे आप लाइफ स्किल डायनामिक मेडिटेशन प्राइवेट लिमिटेड कक्ष के डायरेक्टर हैं, आप ओम फाउंडेशन के प्रेसिडेंट भी हैं, फाउंडर ऑफ योगा साइकोथेरेपी हैं, फाउंडर ऑफ लाइफ स्किल डायनामिक मेडिटेशन हैं, आपने योग मनोचिकित्सा जन शिक्षण मिशन के लिए मानव बोध अभियान शुरू किया, आपने 2018 में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के औपचारिक मान्यता प्राप्त हुई, हैशटैग कंसल्टेंट इन मान ऊर्जा क्लिनिक हॉस्पिटल रोड भूज कच्छ, को आथर ऑफ द चैप्टर ऑफ लाइफ स्किल्स डायनामिक मेडिटेशन गेट कीपर ट्रेनिंग फॉर सुसाइड प्रिवेंशन इन द बुक सुसाइड रिस्क असेसमेंट एंड प्रिवेंशन पब्लिश्ड बाय नेशनल स्प्रिंगर पब्लिकेशन अंडर द एडिटर वर्ल्ड रिनोनड सुसाइड प्रिवेंशन एक्सपर्ट डायरेक्ट डॉक्टर मोरिजियो पिंपली प्रोवाइडेड एक्सपर्ट रिन्यू फॉर द बुक नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज प्रोग्रेस एग्जाम्पल एंड इंडिकेटर्स पब्लिश बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा रिसीव्ड एप्रिसिएशन लेटर फ्रॉम सेंट मदर टेरेसा इन 1993 एंड एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ गुजरात गवर्नमेंट इन 2015 फॉर सोशल वर्क। आपको गुजरात के मुख्यमंत्री के द्वारा आत्महत्या रोकथाम कार्यों के लिए सम्मानित भी किया गया है। आप ऐसे प्रतिभा के धनी हमारे डॉक्टर पंडित देव ज्योति शर्मा जी के लिए मैं दो शब्द बोलना चाहूंगी। दीप माला स्वागत में जल उठी, इत्र मलकर के हवाएं चल उठी, कर रहा स्वागत ये मधुबन घर आपका, स्वागत ही स्वागतम है आपका। करतल धोनी से भाई साहब का स्वागत करेंगे आदरणीय देव ज्योति शर्मा जी।
आज समृद्ध और सुशक्त समाज की कुंजी अध्यात्म विषय पर प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के समाज सेवा प्रभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम के अध्यक्षा तारा दीदी, मुख्य वक्ता पूनम बहन, मंच संचालिका बिंदु बहन, मंच सभी महानुभाव और उपस्थित सभी समाजसेवियों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मुझे सही में खुशी हो रही है इस मन से आप लोग का अभिनंदन करने के लिए। नमस्ते। थोड़ा बात इस संस्था के विषय में मुझे यहां आने के बाद पता चला, और कुछ ऐसी बात जो मैं चाहता हूं यहां बताऊं, वो बताना जरूरी भी है कि कच्छ में संबंधित संस्था के वीरेंद्र भाई आए थे एक कार्यक्रम में, टाउन हॉल में कार्यक्रम हुआ था, बहुत लोगों से उन्होंने संपर्क भी किया और मुझसे भी उनका संपर्क हुआ, और कच्छ के बाबू भाई जो जिनके प्रयास से ही आज हम लोग यहाँ आए हैं, तो इन दोनों का खासकर मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ। हमारे साथ शैलेंद्र भाई रावल आए हैं जो लॉयंस क्लब के भूतपूर्व प्रेसिडेंट हैं और अभी जोनल एरिया में लॉयंस क्लब के पदाधिकारी हैं, जॉइंट्स के स्टेट यूनिट के डायरेक्टर हेमंत भाई हैं, इसके अलावा फॉरेस्ट के एक ऑफिसर हैं और ये शैलेंद्र भाई से बाबू भाई की मुलाकात हुई थी 5-6 साल पहले, 2018 में पहली बार बाबू भाई से उनकी मुलाकात हुई। ये कहानी क्यों कैसे पता चला, हम लोग गाड़ी से आ रहे थे कच्छ से, तो हमारे एक मित्र ने शैलेंद्र भाई से पूछा कि आपकी मुलाकात इन लोगों से कैसे हुई, तो बोला ऐसा कुछ नहीं था लेकिन बाबू भाई से एक बार मुलाकात हुई तो उन्होंने हमें बताया कि आप आइए हमारे सेंटर में एक बार। उसके बाद फिर 5-6 महीने बाद एक बार और कहीं मुलाकात हुई, फिर उन्होंने फिर वही बात बताया कि आप एक बार आइए, थोड़ी बातचीत हुई। फिर कुछ समय के बाद कुदरती इन्होंने ही बोला कि हमको आपके सेंटर पर एक बार आने का है, और इस तरह से शैलेंद्र भाई प्रथम बार उनके सेंटर पर गए। उन्होंने 7 दिन का ट्रेनिंग में इनको जोड़ा, उसके बाद से हर साल शैलेंद्र भाई परिवार के साथ यहाँ आते हैं। इस बार परिवार के साथ नहीं आए, ग्रुप को लेके आए, मुझे भी उन्होंने जोड़ा अपने साथ और मुझे यहाँ आकर बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, बहुत कुछ जानने का मौका मिला। आज के मैं साइकेट्रिस्ट हूँ और हमारा काम दवाओं के साथ होता है, उसके अलावा दवाओं कम कर या दवाओं बंद करके भी क्या साइकेट्रिस्ट प्रॉब्लम ठीक होता है, इस विषय में अनुसंधान करकर कच्छ में ही योग साइकोथेरेपी का निर्माण मैंने किया और आज वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में राष्ट्रीय सम्मेलनों में इसकी ट्रेनिंग मनोचिकित्सकों को मैं देता हूं। यहां जो मैं अभी पूनम बेन का भी जो मैंने सुना, उन्होंने तो बहुत कुछ अच्छी अच्छी बातें बोली, बच्चों के विषय में ऐसे बातें बोली जिसके जानकारी मात्र से लोग अपने घर में बच्चों का परवरिश ठीक से कर सकते हैं। और उन्होंने लास्ट में एक चीज बोला कि आप जो भी चीज आइए यहां छोड़ के जाइए। इस संदर्भ में मुझको एक याद आया, क्योंकि मेरे पास पेशेंट आते हैं, एक पेशेंट आया था मेरे पास तो बहुत पहले, 4 साल पहले उसने दवा चालू की थी, बहुत सीवियर डिप्रेशन था, एक्सट्रीमली सुसाइडल थॉट्स थे और उस पेशेंट ने परेशान भी बहुत किया था। लेकिन क्या हुआ, 2-3-4 फॉलोअप के बाद पेशेंट आया नहीं, और ठीक यहां आने के 2-4 दिन पहले दूसरे पेशेंट को लेकर उसका भाई आया था। फिर मैंने पूछा, भाई 1 साल तक का दवा लेने का होता है और आप तो बीच में उनका कट किया, तो उन्होंने क्या बात बताया जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने बोला कि हमारे पापा गए ना, तो वो बोल के गए कि तुम्हारी पीड़ा मैं लेकर जा रहा हूं। अब ये एक अद्भुत चीज है, तुम्हारी पीड़ा मैं लेके जा रहा हूं, उसके पापा बोल के तो उनका तो स्वर्गवास्त हो गया, लेकिन उस दिन से पेशेंट ठीक है। तो ऐसा बहुत सा चीज है जो जिस पर साइंटिफिकली रिसर्च भी हो चुका है, अगर आदमी विश्वास करता है ईश्वर पर तो ईश्वर उसके लिए हाजिर है। एक विश्वास ही होना चाहिए, कल्पना में या विचारों से या बाहरी दिखावा से आप बहुत कुछ करो और विश्वास नहीं हो तो हीलिंग होती नहीं है। ब्रह्मा कुमारी संस्था में यहां आकर मुझे लगा कि बहुत बड़ा सेंटर है, मैंने तो यहां बहुत कुछ देखा, बहुत बड़ा विस्तार में है, तो और यहां आने वाले कुछ लोगों से भी मुलाकात हुई और मैं ये बात भी डालना चाहूंगा, नेपाल के मित्रों से भी मुलाकात हुआ और उन्होंने तो टोपी गिफ्ट भी दिया इतने अच्छे अच्छे लोग आते हैं। और एक खास बात और बताएंगे, परसों हम लोग घूमते घूमते एक सेंटर, रात के 10 बजे गए एक सेंटर पर, तो मेडिटेशन सेंटर पर यहीं के, तो वहां पर 3 यहाँ के सेवक उपस्थित थे, वो लोग डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने पूछा कि क्या है, तो उन्होंने बताया मुरली करकर हम लोग का जो होता है संवाद, उस पर पूरी दिन की तैयारी होती है, तो दिन रात ये लोग तैयारी में लगे रहते हैं। तो हमको तो लगता है कि ये सही में विश्व का सर्वश्रेष्ठ संस्था है, सर्वश्रेष्ठ क्यों, क्योंकि मैं अब WHO के एक्सपर्ट कमेटी में भी हूँ, सुसाइड प्रिवेंशन का वर्ल्ड लेवल का जो एक्सपर्ट कमेटी है उसमें मैं नोटिफाइड सदस्य हूँ, और हम लोग काम करने का तरीका देखकर अनुभव से समझ लेते हैं। तो मेरे मन में ऐसा कुछ था नहीं, शैलेंद्र भाई के कहने से मैं जुड़ा था कि चलो चले चलते हैं, लेकिन बहुत अच्छा हुआ, मेरा आना बहुत अच्छा हो गया और मैंने बहुत चीज देखा यहाँ पर, तो ये याद मैं अपने साथ ले जाऊंगा और यहाँ के वहां के लोगों को भी बताऊंगा। और इस संस्था को पब्लिक से जोड़ना जरूरी है, पैसा बहुत लगता है इलाज में, और मैं बोलना क्या बोलूं, मैं तो कभी कभी अपने साइकेट्रिस्ट सेमिनार में बोलता हूँ, 12 दवाइयां लिखी जाती है, साइकेट्रिस्ट लोग एक डिप्रेशन के लिए 12 दवाइयां लिखते हैं, लेकिन अगर किसी को भी किसी टाइप की तकलीफ हो, मानसिक बीमारी हो, और इस टाइप के संगठनों से सिर्फ अगर जुड़ जाता है, 7 का अगर कोर्स करता है, तो यकीन मानिए, ये रिसर्च के ऊपर से बोल रहा हूं, ये बाद में भी आप हमसे पूछ सकते हैं कि आप किस आधार पर बोल रहे हैं, तो सब चीज हम रिसर्च के आधार पर ही बोलते हैं। यकीन मानिए, उनकी दवा की मुद्दत भी कम हो जाएगी, 1 में ही दवा बंद हो जाएगा, और बाद में दवा बंद करने के बाद ऐसे पेशेंटों में बार बार बीमारी दोबारा होती है, वो बार बार होने वाली बीमारी जिसको हम लोग रिलैप्स कहते हैं, गुजराती में उथलो कहते हैं, वो नहीं होगा, लक्षण दोबारा आएंगे नहीं। आज का विषय बहुत ही अच्छा है, अतीत से स्वतंत्रता, और मीनाबेन ने भी बहुत अच्छी बात बोली कि जब आप अतीत को याद करते हो, और अतीत को जब आप याद कर पुराने चीज के संदर्भ में जाते हो, तब क्या होता है, वो पेन नहीं होता, वो सफरिंग होता है। पेन किसको कहते हैं मालूम है, अभी आपके साथ हमारा कुछ प्रॉब्लम हो, आप हमको बहुत बेइज्जत कर दो या मंच से निकाल दो, तो हमको पेन होगा और सही में हम इफेक्टेड होंगे, और क्या होगा, 2-4 दिन 5 दिन शायद पेन हो, ठीक है, या फिर फिजिकल किसी ने मार दिया चाकू, तो 4-5 दिन के लिए शायद हमको पेन हो, बाद में ठीक हो जाएगा। सफरिंग किसको कहते हैं कि हम ये घर में इसी एपिसोड को याद करेंगे ना, तो फिर हम बरसों पीड़ा में रहेंगे, 5 बरस 10 बरस 20 बरस, तो उसको सफरिंग कहते हैं। तो हीलिंग जो है सफरिंग को हटाने के लिए होता है, और हमने यहां बिल्कुल देखा है कि पूरा मनोवैज्ञानिक तरीका है, आध्यात्मिक तरीका है पूरा, और अध्यात्म का ही केंद्र है ये, लेकिन हमने तो इसमें मनोविज्ञान और साइंस को देखा है। तो अब तक किस कार्यक्रम के जितने वक्तव्य में मैं शामिल हुआ, मुझको ऐसा जरा भी नहीं लगा कि ये आउट ऑफ साइंटिफिक स्टेटमेंट है, तो बहुत ही सहज भाव से लोकल भाषा में लोगों के हृदय में जिस तरीके से अध्यात्म के ज्ञान के साथ साइंटिफिक ज्ञान ब्रह्मा कुमारी में किया जा रहा है, बहुत ही अद्वितीय है, इसकी लोगों को जरूरत है। मीनाबेन ने जो बात कही कि अतीत में जाने से आपका बीपी हाई हो जाता है, जी हाँ, कोई भी टेंशन और खासकर अतीत का टेंशन आप में कॉर्टिसोल करकर स्ट्रेस हार्मोन का बढ़ाएगा, जिसके कारण आपका ब्लड प्रेशर भी हाई होगा, ट्राइग्लिसराइड लेवल भी हाई हो जाएगा, और मेमोरी भी डाउन हो जाएगी, मेमोरी के लिए जो आपका हिप्पोकैम्पस करके एक केंद्र होता है वो डैमेज होता है स्ट्रेस से, वो हिप्पोकैम्पस को ठीक रखना हो तो ध्यान हर रोज नियमित करना चाहिए। और ध्यान से एक चीज और आती है, ध्यान करने की शक्ति बढ़ती है, आपका जो सामने का भाग है वो फोकस करने के लिए सक्षम बनता है, उसका टेक्निकल नाम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स नाम है, हम लोग डॉर्सोलेटर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, तो बहुत पावरफुल चीज है। तो जब भी आप अतीत में जाते हो तो याद रखो आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डैमेज हो रहा है, कोई भी व्यक्ति हो उसका डैमेज होगा, अगर ये डैमेज होगा तो बाद में मेमोरी भी जाएगी और आप डे बाय डे एक्टिविटी कर नहीं पाओगे। तो बहुत ही आनंद की बात है कि यहाँ पर सही में सही तरीके से साइंटिफिक नॉलेज को दिया जा रहा है, और बहुत मेहनत के साथ दिया जा रहा है, और बहुत ही डेडिकेशन के साथ दिया जा रहा है, ताकि उस चीज के साथ आप लोग ट्रेंड हो जाओ और आप अपने जीवन में उतार सको। इसलिए मैं इनके इस सशक्त प्रयास का शुभकामना के साथ मैं अपना वक्तव्य यहाँ पर बंद करता हूँ। धन्यवाद, नमस्ते।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर देवज्योति शर्मा जी का, आपने इस ज्ञान सरोवर परिसर में आकर बहुत सारे अनुभव किए, बहुत निरीक्षण भी किया, और उसमें आपने बहुत सुंदर अनुभव पाया, और इस अनुभव को आप हमेशा अपने जीवन में आत्मसात करेंगे और साथ साथ जो भी आपके संबंध संपर्क में आए उन्हें भी जरूर इसको जरूर बताएंगे, ये हम आपसे अपेक्षा रखते हैं। तो हम आदरणीय भाई सबका बहुत बहुत तहे दिल से बहुत धन्यवाद करेंगे। तो अब मैं आदरणीय प्रीति बहन से अनुरोध करूंगी, प्रीति बहन के विषय में हम थोड़ा सा परिचय देना चाहेंगे। बाल्य अवस्था में पंजाब के अबोहर शहर में शहरी ज्ञान प्राप्त किया। आपका पूरा परिवार ज्ञान में है, आप स्कूल में टीचर थे पहले, 2006 से सिरसा हरियाणा में सेवा कर रहे हैं, 2012 से ब्रह्मा कुमारी सद्भावना भवन में संचालिका के रूप में सिरसा के आसपास की सेवाओं में सेवारत हैं। स्कूल कॉलेज में भिन्न भिन्न विषयों पर बच्चों को मार्गदर्शन देते हैं। आप सोशल विंग के स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, तो आपके लिए हम दो शब्द कहना चाहेंगे। शिव बाबा को मीत बनाकर शिव की प्रीत की रीत निभाती हैं, आत्मस्मृति का तिलक लगाकर सबकी आत्म ज्योति जगाती हैं। तो ऐसी हमारी आदरणीय प्रीति बहन से हम अनुरोध करेंगे कि आपको एक डीप साइलेंस का अनुभव कराएं। इतने दिन से आप यहाँ पर हैं और परमात्मा प्यार क्या होता है, परमात्मा सानिध्य क्या होता है, परमात्मा प्यार परमात्मा संबंध क्या होता है, उसका अनुभव कराने के लिए हम आदरणीय प्रीति बहन को अनुरोध करेंगे।
ओम शांति। मंजासीन हमारी वरिष्ठ दीदियां, आज के गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर देवज्योति शर्मा जी, सभा में उपस्थित अलग अलग सामाजिक संस्था से जुड़े हुए हमारे अति स्नेही भाइयों और बहनों, आज का विषय अतीत से मुक्ति। इस विषय पे अभी आपने हमारी बड़ी दीदियों से बहुत टिप्स लिए हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हम अतीत से मुक्ति पाना चाहते हैं तो उसके लिए एक तरीका है मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन माना हीलिंग, मेडिटेशन माना मन बुद्धि की एकाग्रता। जैसे अभी आपने सुना कि पुराने को भूलना है, नया लाना है। घर में भी हम कोई पुरानी चीज को अगर निकालते हैं, उसके बदले नई चीज को लाते हैं, तो पहले से कुछ तैयारी करनी पड़ती है। ऐसे यहां पुराने विचारों को निकालने के लिए और नए विचारों को डालने के लिए अपने मन में सुंदर सुंदर विचारों की सृजना करनी पड़ती है, क्योंकि मेडिटेशन माना मन और बुद्धि की एकाग्रता। मन विचार करता है, बुद्धि एक दृश्य बनाती है। एक छोटे बच्चे को माँ बाप विजन देते हैं कि मेरा बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा। वो विजन उनकी आंखों में होता है, बच्चा भले छोटा है लेकिन बार बार जब उसको ये रिपीट कराया जाता है तो एक दिन वो जरूर डॉक्टर बनता है। ऐसे यहाँ मेडिटेशन में ये अभ्यास कराया जाता है कि मैं हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ। और अभी हम उसका अभ्यास भी करेंगे। थोड़ा सा अटेंशन से बैठना पड़ेगा क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज के लिए भी ड्रेस चाहिए होती है, स्थान चाहिए होता है, ये मन की एक्सरसाइज है। जितना आप रिलैक्स होकर बैठेंगे उतना अच्छी अनुभूति कर सकेंगे। हम आपको अच्छे विचार देंगे, आपने उसका विजन बनाना है। आपको बहुत आनंद आएगा क्योंकि आज सुबह के सत्र में आपने सुना हम सब एनर्जी हैं, पॉइंट ऑफ लाइट हैं, हमारा पिता भी वैसा ही है। इसीलिए उस पिता से मिलने के लिए जिसकी बॉडी नहीं है, जिसका हमारे जैसा शरीर नहीं है, तो हमें उस कॉन्शियस में बैठना पड़ेगा। हेल्प के लिए सामने पॉइंट ऑफ लाइट बना भी हुआ है, अगर आप अपने ध्यान को वहां कंसंट्रेशन में टिकाएंगे, कंसंट्रेट करेंगे तो आपको बहुत मदद मिलेगी। इसलिए एकदम रिलैक्स होके बैठें, डीप ब्रीथ करेंगे, महसूस करें आपका मन, आपका चित शांत हो रहा है, शांत हो रहा है, शांत हो रहा है। आपके आसपास कुछ आवाजें भी कानों में पड़ रही हैं, लेकिन मन एकदम शांत है। अपने मन को, अपनी बुद्धि को एकाग्र करेंगे अपनी चेतना की ओर, मस्तक पर चमकते हुए सफेद रंग के सितारे को देखें। ये मैं हूं, मेरी असली पहचान, इस शरीर का मालिक, मन का मालिक मैं चमकता हुआ सितारा हूं, शांत हूं, शक्तिशाली हूं। अभी सितारा परमात्मा पिता को याद कर रहा है, जो इस दुनिया से पार, चांद सितारों से पार परम धाम में रहते हैं। परम धाम शांति की दुनिया, प्रकाश की दुनिया, वहां मुझ आत्मा का पिता सूर्य की भांति चमक रहे हैं। अपने विजन को क्लियर करेंगे, माथे पर छोटे से बिंदु सितारे को देखेंगे, दूरासमान से तेज रोशनी आती हुई, परमात्मा पिता जो अपने घर से वो शांति की ऊर्जा, वो प्रेम की ऊर्जा, वो शक्तियों की ऊर्जा बिखेर रहा है, एकदम एकाग्रता से उस ऊर्जा को अपने सिर पर पड़ता हुआ महसूस करेंगे। मैं परमात्मा की छत्र छाया में हूं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं खुशी से संपन्न आत्मा हूं। इस ऊर्जा को अपने अंदर भरते जाएं, महसूस करें वो सफेद ऊर्जा मेरे भीतर जा रही है, अंदर की अशांति, दुविधा, काला काला धुआं बनकर बाहर निकल रही है। मैं निश्चिंत हूं, बहुत खुश हूं, ऐसे लग रहा है जैसे आज परमात्मा अपनी शक्तियां मेरे अंदर भर रहे हैं। दिल से, मन से बारंबार उस परमात्मा पिता का शुक्रिया करेंगे, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। आपका हाथ, आपका साथ सदा मुझ पर बना रहे, मैं आपकी छत्र छाया में रहूं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी रहें, यही मेरी शुभ कामना, शुभ भावना। ओम शांति शांति शांति। इस अभ्यास को आप सुबह शाम दोनों टाइम कर सकते हैं, अपने अतीत से मुक्ति पाने के लिए भी, अपनी बुरी यादों को मिटाने के लिए भी, और अपने माइंड को भी, मन को भी एम्पावर करने के लिए आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। बहुत बहुत थैंक्स आप सबका भी, सोशल लिंक का भी। ओम शांति।
ओम शांति। हमारी प्रीति बहन ने आप सबको बहुत सुंदर गहराई में, मेडिटेशन की गहराई में लेकर गए। ऐसे रोज आप अभ्यास करेंगे तो आपका मन और तन दोनों स्वस्थ होगा, सशक्त होगा और समृद्ध होगा। तो अब मैं आदरणीय तारा दीदी जी का परिचय देना चाहूंगी। आप पिछले 50 वर्षों से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्था से जुड़कर समर्पित रूप से सेवाएं दे रही हैं। समाज के हर वर्ग के लिए व्यक्तित्व विकास शिविर, तनाव मुक्त जीवन, सच्ची मन की शांति, महिला सशक्तिकरण, बाल व्यक्तित्व विकास शिविर, मेडिकल चेकअप कैंप, व्यसन मुक्ति कैंप, ऐसे अनेक कार्यक्रमों का आपने कुशल संचालन किया है। शांति, नम्रता, प्रेम, गंभीरता, धैर्यता जैसे अनेक दैवी गुण आपका व्यक्तित्व सुशोभित है। आपके प्रवचनों से लाभान्वित होते अनेक भाई बहनों ने अपने जीवन में परिवर्तन और सुख शांति का अनुभव किया है। पनवेल तालुका के अंतर्गत अनेक गांव में आपने समय प्रति समय अनेक अभियान तथा रैली का आयोजन कर जन जन का आध्यात्मिक उत्थान किया है। आपको महाराष्ट्र के लोक कल्याणकारी सेवा संस्था पनवेल, मीडिया प्रेस क्लब, जीवन कला मंडल पनवेल, रोटरी क्लब पनवेल, सहयोग स्नेह सेवा संस्थान जैसे अनेक संस्थाओं से सम्मानित किया गया है। आप सीनियर राजयोगा टीचर हैं और सोशल सर्विस विंग की आप एक्टिव मेंबर भी हैं। तो आपके लिए हम दो लाइनें बोलना चाहेंगे। ज्ञान, योग और सेवा में सदा निरंतर तत्पर हैं आप। शिव बाबा के श्रीमत पर चलकर सबकी दुआएं लेते हैं आप। जो भी मिला ज्ञान के पथ पर सबको मंजिल तक पहुंचाते हैं आप। ऐसे आदरणीय तारा दीदी जी, आप अपना अध्यक्षीय उद्बोधन हमारे भाई बहनों के सामने रखेंगे। आदरणीय तारा दीदी जी।
ओम शांति। प्रेम से बोलेंगे ओम शांति, खुशी से बोलेंगे ओम शांति। परमपिता की प्यारी संतान आत्माएं, मंचासीन डॉक्टर आदरणीय शर्मा भाई जी, साथ साथ प्यारी बहनें, अभी आप सभी ने पास्ट को भूलने की अनेक बातें सुनी, युक्तियां भी मिली। अभी मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेती हूं, सिर्फ पास्ट की बातों को भूलने के लिए मैं यही एक कहेगी कि अपने मन को सदा निर्मल और शुद्ध बनाओ। हम देखते हैं कि छोटे बच्चे बाहर में खेलते हैं, खेलते खेलते वह झगड़ते भी हैं, एक दूसरे को मारते भी हैं, फिर दूसरे दिन हम देखते फिर वह आपस में मिलकर खेलना शुरू कर देते। तो बच्चे निर्मल शुद्ध होने कारण किसी की बातों को बुद्धि में नहीं रखते, साथ साथ अपने स्वभाव को हम सरल बनाए। सरल व्यक्ति किसी के अवगुणों को अपने चित्त पर नहीं धरता, सबके साथ मिलनसार रहता, विशेषताओं को देखता और विशेषताओं से उनको आगे बढ़ाता। साथ साथ हम अपनी वृत्ति को भाई भाई की वृत्ति, श्रेष्ठ वृत्ति बनाए। यह विश्व मेरा परिवार है, यह समाज मेरा परिवार है। परिवार के अंदर छोटी बड़ी बातें होती है, लेकिन परिवार की वृत्ति हमारे बुद्धि में है कि यह सब परमात्मा की संतान है, तो श्रेष्ठ वृत्ति के द्वारा हम किसी की भी बातों को सहज भूल सकते हैं। साथ साथ हमारी जो भावना ये है, हरेक के प्रति कल्याणकारी हो, रहम की हो, जब हमारे में ये भावना होगी किसी के कल्याण की, तो किसी के कर्मों को, किसी के अवगुणों को हम बुद्धि में पकड़ के नहीं रखते हैं, क्योंकि हमारे बुद्धि में रहता कि इनका कल्याण करना है। अरे कल्याण कब, तब हम उनका कर सकते हैं, उनको आगे हम तब बढ़ा सकते हैं जब हम कमियों को नहीं देखते या उनके कर्मों को नहीं देखते, उनके गुणों को देखते हैं। साथ साथ हम परोपकारी बने। हमारा पिता परमात्मा दयालु, कृपालु, रहमदील, कल्याणकारी है। तुम पिता परमात्मा के समान परोपकारी बने। हम भगवान के आगे ये कहते आए कि भगवान मेरे अवगुण चित पर नहीं धरना, तो भगवान ने, शिव पिता ने हमारे अवगुण चित पर नहीं धरे और हमें अपना बनाकर इस ईश्वरीय परिवार में जुटा के रखा, एकता में रखा। तो अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए हम महान बने, इसलिए कहा जाता बनो महान पर करो कल्याण। तो परमात्मा जो रहमदील परोपकारी है, उसके हम संग में सदा रहे। कैसे संग में रहना है, वो मेडिटेशन का आपने अभ्यास किया, और सदैव हर कर्म करते हुए कर्मयोगी बनकर परमात्मा को जो दयालु कृपालु परोपकारी है उसके अपने साथ रंगे, तो उसके संग का रंग हमारे जीवन में आता रहेगा और अपनी महानता से हम सारे समाज को महान, श्रेष्ठ, उज्जवल बना सकते हैं। मुझे एक बात याद आती कि किसी ने मकान की खिड़की से बाहर देखा तो बाहर तालाब था, तालाब में कीचड़ था, ऊपर देखा आकाश की ओर तो चांद को देखा। किसी ने खिड़की से बाहर देखा तो तालाब में कमल देखा, कीचड़ में कमल देखा, और किसी ने चांद में दाग देखा। तुम परमात्मा के संग में रहकर सदा विशेषता को देकर अपने जीवन को महान बनाकर हम औरों के जीवन को भी महान बनाते चले। ओम शांति।
ओम शांति। आदरणीय तारा दीदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया। सॉल्ट एंड स्वीट, परोपकारी बनिए, भाई भाई की दृष्टि रखिए, सरल स्वभावी बनिए, खुले विचार वाला बनिए। जब हम ऐसे अपने मन को समृद्ध बनाएंगे, मन को खुला रखेंगे, संकुचित विचारधाराओं से बाहर निकलेंगे, तो हम समाज की सेवा कर पाएंगे। अभी हमारे बीच मंच पर उपस्थित हमारे अतिथियों का सम्मान करेंगे। हमारे आदरणीय तारा दीदी जी को अनुरोध करेंगे कि हमारे डॉक्टर देव ज्योति शर्मा जी का मोमेंटो देकर सम्मान कर रहे हैं। बाबा के, परमात्मा के घर का टोली प्रसाद, हम सभी यहाँ टोली बोलते हैं, प्रसाद और सुंदर स्लोगन आपको दिया जा रहा है, तो आप सभी भी बहुत सम्मानित है। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस में लाने के लिए आपके सेंटर की दीदियों ने कितने लोगों को मैसेज दिया होगा, लेकिन उसमें से आप वो कुछ सेलेक्टेड चुनी हुई आत्माएं हैं जिनको परमात्मा ने चुनकर इतने सुंदर ज्ञान सरोवर परिसर, परमात्मा के अवतरण भूमि पर आपको अपने प्यार की डोरी में बांध कर यहाँ बुलाया। इसलिए आप सभी भी बहुत बहुत सम्मान के पात्र हैं। इसलिए आप सभी अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। तो अभी हम 2 मिनट परमात्मा की स्मृति में बैठेंगे, फिर ये सत्र समापन होगा।